Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Svetashvatara Upanishad par pehle adhyay ke 9वां श्लोक ज्ञाज्ञो द्वौ वचा वीशनीषा वजा एका भोक्तृभोगार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ज्ञाज्ञो द्वौ वचा वीशनीषा वचा एका भोक्तृभोगार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ज्ञाज्ञो द्वौ वचा वीशनीषा वचा एका भोक्तृभोगार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ज्ञान ज्ञान माने सर्वज्ञ अज्ञान माने अल्पज्ञ ज्ञान ज्ञौ दो दोनों क्रमशः अजा अजन्म है दोनों क्रम से ईश और अनीश है ये दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा अजा है जो भोक्तृ अज्ञा अनीशा को भोग देने में प्रयुक्त है दो अजा में से एक अजा को घास डालने में प्रयुक्त है अजा माने बकरा बकरी है दो बकरे हैं उनमें से एक बकरे को तो घास खिलाती है ये दूसरे को घास नहीं डालती दूसरे को घास क्यों नहीं डालती है बोले वो जितना डालो खाता ही नहीं तो क्या डालेंगे जीव रूपी बकरी को माया रूपी बकरी घास डालती है ईश्वर रूपी बकरे को माया रूपी बकरी घास नहीं डालती तो उसको घास क्यों नहीं डालती है तो बोले वो खाता ही नहीं इसलिए नहीं डालती तो सीधी सी बात है यानी जीव और ईश्वर दोनों को भोग देने के लिए तत्पर हुई लेकिन ईश्वर ने उस भोग को स्वीकार नहीं किया जीव ने उसको सहर्ष स्वीकार किया अजाभेका भोक्तृ भोगार्थ युक्ता नियुक्ता अनंतश्च आत्मा इन तीन के अतिरिक्त एक चौथा भी है जो विश्वरूप है और अनंत है और अकर्ता है वही आत्मा है त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् जिस समय ये तीनों ही कोई अकर्ता भोक्ता अनंत आत्मा के रूप में देख लेता है तीनों को उससे अभिन्न के रूप में देख लेता है तब वह लीना तत्परा योनि मुक्ता। पहले के श्रुति ने जो कहा योनि मुक्ता वो फल बता दिया है, और जन्म गर्भ गर्भ जन्म जरा मृत्यु आदि योनियों से वो मुक्त हो जाएगा। इस पर भाष्य चल रहा था, कहां से भाष्य? शुरू से ही है। ज्ञा ज्ञौ दौ इति, ज्ञा अज्ञा, ज्ञा ज्ञा तौ, ज्ञा ज्ञौ दो, दोनों, एक ज्ञानी दूसरा अज्ञानी। ज्ञा शब्द ले सर्वज्ञ, अज्ञ शब्द ले अल्पज्ञ। न केवलम व्यक्ता व्यक्तम, ये दोनों व्यक्त और अव्यक्त हैं। भरत ईशो नाप्य अनीश, संबद्धते जीव अपितु ज्ञा ज्ञौ दौ ज्ञा ईश्वरो अज्ञो जीव ताऊ अजौ जन्मादि रहित। ये दोनों जन्म से रहित हैं इसलिए उनको अजा कहा, न जायते इति अजा। ब्रह्मण एव अविकृतस्य जीवेश्वरवात्मना अवस्थानात्, क्योंकि अविकारी जो ब्रह्म है वही माया और अविद्या उपाधि से चलती जीव और ईश्वर के रूप में प्रतीत हुआ हुआ है। तो जीव और ईश्वर के रूप में माया अविद्या उपाधि के चलते जीव और ईश्वर के रूप में प्रतीत होना ये कोई जन्म नहीं कहलाता है। तथा च श्रुति, श्रुति ने यही कहा है कि परमात्मा ही अजन्म, परमात्मा ही उपाधिकृत जीव और ईश्वर के रूप में व्यक्त हुआ। नया जीव बना नहीं है, नया ईश्वर बना नहीं है, पहले से ही अस्तित्व वाला परमात्मा ही उपाधि के चलते जीव और ईश्वर के रूप में व्यक्त हुआ। ब्रह्म से भिन्न ईश्वर की कोई नया उत्पत्ति नहीं और ब्रह्म से भिन्न जीव की कोई नई उत्पत्ति नहीं है। ये बात श्रुति ने कहा है, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति ने। किस तरह? पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरस पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशतु। उस परमात्मा ने माया वृत्ति के द्वारा पुरः चक्रे द्विपदः पुरः चक्रे दो पांव से चलने वाला खड़ा होने वाला एक पुरी का निर्माण किया। शरीर, पुरी माने शरीर, कानपुर नाकपुर है ना, कितने पुर है? नौ, दो पुर तो प्रसिद्ध है, एक नागपुर है दूसरा कानपुर है। बचपन में हम लोग मजाक किया करते थे, तो तुझे कानपुर लिखना आता है? बोले हां, क्या क्यों नहीं आएगा, तो लिख कानपुर। वो पूरा लिखता था कानपुर, हमने तुझे नहीं आता है चल। बोले तुझे आता है? बोले हमको आता है। तो हम खाली कान लिखते थे और मिट्टी से पूर देते थे, हो गया कानपुर। कान लिखा और उस कागज को जहां कान लिखा था उस कान को हम मिट्टी लाते थे और मिट्टी से पूर दिया, तो क्या हुआ? कानपुर हो गया ना, तो तुझे नागपुर लिखना आता है? तो नाक इतना लिखा और मिट्टी से फोड़ दिया तो क्या हुआ? नागपुर। ऐसा ही एक पुर और है, इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुर। ये डॉक्टर साहब ने याद किया हुआ है, इसका नाम है ब्रह्मपुर। उपनिषद में कहा है इसका नाम ब्रह्मपुर। ब्रह्म लिखा और इस शरीर मिट्टी से हाड़ मांस से पूर दिया, क्या हुआ? ब्रह्मपुर। ब्रह्म को हाड़ मांस से पूर दिया तो ब्रह्मपुर। इस शरीर का नाम ब्रह्मपुर। और इसी को कठोपनिषद में नवद्वार पुरे देही नैव कुर्वन नकारयन। नव दरवाजा वाला ये पुरी में पुरियाधिपति, पुरी स्वामी, पुरियाधिपति रहता है क्या? नैव कुर्वन नकारयन देहे, इस पुरी में वह न करता है न कराता है। तो वह कुटस्थ होगा। यदि ईश्वर होगा तो कराने वाला होगा, जीव होगा तो करने वाला होगा। जीव और ईश्वर से भिन्न कुटस्थ होगा तो न करने वाला होगा न कराने वाला होगा। तो उसने सबसे पहले पुर का निर्माण किया। कैसा पुर? तो द्विपदा, यानी मनुष्य शरीर को तैयार किया। इतने से व्यवहार नहीं चला तो दूसरा पुर निर्माण किया। कैसा? पुरश्चक्रे चतुष्पद, गाय भैंस आदि चतुष्पद वाला पुर दूसरा बना लिया। द्विपद मनुष्य और चतुष्पद गाय भैंस पशु कुत्ते आदि, और तीसरा पुर बनाया। पुरा स पक्षी भूत्वा, पक्षी पतत्री गच्छति इति पक्षी, पंखों के माध्यम से गमन करे हुआ पक्षी। पुरा पुरुष आविशत, और इस प्रकार के द्विपदा पुरा, चतुष्पदा पुरा और सपक्ष पुरा, इन पुरों का निर्माण करके वह पुरा, वह पुरुष आविशत, उन्हीं पुरों में द्विपदपुर, चतुष्पदपुर और सपक्षपुर, इन्हीं में वह प्रवेश करके बैठ गया। कठोपनिषद की श्रुति, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिश्च। पूरी श्रुति इस तरह है, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। बिना रूप वाला आत्मा प्रतिरूप में रूपवान बनकर बैठ गया। एक आत्मा अनेक पूर्वों में अनेक पुरुष होकर बैठ गए। आत्मा को पुरुष कहने में कारण क्या था? वेदांत में स्त्री का महत्व नहीं है, फिर आप लोग नाराज हो जाओगे। वेदांत में स्त्री को भी पुरुष ही कहा है, समझ रहे हो कि नहीं? वेदांत में स्त्री को भी पुरुष ही कहा है। तो स्त्री को पुरुष कहने का कारण क्या है? किस हेतु से कहा गया है? पुरिषु ऊसती वसती इति पुरुष, ये व्युत्पत्ति है। नवद्वार वाला या द्विपदापुरी या चतुष्पदपुरी में रहने वाला होने के कारण उसका नाम पुरुष, ये व्युत्पत्ति है पुरुष शब्द। और दूसरी व्युत्पत्ति है पूर्णत्वात् पुरुष, नख से लेकर शिख पर्यंत जो व्यक्त होकर रहता है, पूर्ण होकर रहता है, अपूर्ण नहीं। ऐसा नहीं है कि हाथ में नहीं है, पांव में है, पांव में नहीं है, हाथ में है, आत्मा नाक में है कि नहीं है? आत्मा नाक में है कि नहीं है? कान में है कि नहीं है? पांव में है कि नहीं, पायु में है कि नहीं, उपस्थ में है कि नहीं? हमने किसी से पूछा एक बार, आत्मा पायु में है कि नहीं, वो समझ नहीं पाया पायु का अर्थ। तो वेदांति होता तो समझ जाता है ना। तो पायु का मतलब गुदा द्वार, जहां से मल विसर्जन निस्सृत होता है और जहां से मूत्र निकलता है, वो गोपस्थ, यही ना है। जब हमने कहा कि जहां से मल निकलता है उसको पायु कहते हैं, आत्मा पायु में है कि नहीं, बोले नहीं, सीधे कह दिया उसने। बोले क्यों? बोले ऐसे गंदे जगह आत्मा थोड़ी रहता है। कहां रहता है? बोले वो तो हृदय में रहता है। अब तुम यदि पायु में रहता है नहीं मानोगे तो फिर पुरुष कैसे कहोगे उसको? वो तो पूर्ण है क्योंकि शरीर के हर अंग में है, नख देखी नख से लेकर सिख पर्यंत पूरा होने के कारण पूर्ण पुरुष। और पुरुष है नत्वा पुरुष, पुरुषु उसति वसति इति पुरुष, ऐसे तीन व्युत्पत्ति किया है। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, अग्नि यथा एक, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट, ईंधन में प्रवेश करके, भुवनम शब्द का उपलक्षण है ईंधन, ईंधन में प्रवेश होकर, रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुवत, जिस प्रकार का ईंधन होगा उसी आकार का वो अग्नि अपना व्यक्त करेगा, व्यक्त होगा, दिखेगा। तथा इसी तरह आत्मा पुरुष एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्च, वो जितने रूपवान हैं उनमें तो रूपवान होकर ही रह रहा है, लेकिन जहां रूप नहीं है, आकार नहीं है, वहां भी वो रह रहा है, इसलिए बहिश्च, बाहर भी है। आकार वाले पदार्थ में तो आकारवान होकर रह रहा है, और जहां आकार नहीं है वहां पर भी रहता है। बहिश्च का मतलब पदार्थ से बाहर। इति च, इस तरह कठोपनिषद ने भी कहा। ईशनीसौ छांदसम रसोत्व, श्रुति में रस्व प्रयोग किया, ये क्यों? ईश दीर्घ प्रयोग होना चाहिए था। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, कोई वैयाकरणी बैठा होगा उसने ऑब्जेक्शन किया होगा, वैयाकरणियों को तो फिर बड़ा खटपट करते हैं ना, रस्व है तो रस्व ही उच्चारण करना चाहिए था, ईश शब्द दीर्घ है ईश, तो यहां पर रस्व उच्चारण क्यों किया? तो बोले ये छांदस है, यानी वैदिक छंदों में वेद में पाणिनीय व्याकरण का अनुशासन लागू नहीं होता है। विद्वान लोगों की मान्यता है, क्योंकि वेद तो पाणिनीय व्याकरण से पहले का है, तो वर्णनीय व्याकरण तुम पीछे का है। तब तुम जो संस्कृत का जो ग्रामर पाणिनीय व्याकरण है, जिसके आधार पर सभी संस्कृत भाषा आदि आबद्ध हैं, और उन्हीं सूत्रों के आधार, फॉर्मूले के आधार पर संस्कृत भाषा बना हुआ है, अनुशासित है, तो वह क्योंकि वैदिक है इसलिए व्याकरण पाणिनीय व्याकरण का अनुशासन वेद में लागू नहीं होता। वेद अपने हिसाब से निरुक्त से चलता है। वैदिक व्याकरण का नाम है निरुक्त, लौकिक संस्कृत का व्याकरण है पाणिनीय व्याकरण। तो यह वैदिक है, यहां तुम पाणिनीय हो तुम, और यह वैदिक मंत्र है, इसलिए तुम्हारा अनुशासन यहां लागू नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ, ह्रस्व क्यों हुआ, दीर्घ होना चाहिए था, शंकराचार्य ने उतार दिया। ये छांदस है, वेद का है। प्रश्न किया, ननु अद्वैतवादिनो यदि भोक्तृ भोग्य लक्षण प्रपंच सिद्धि स्यात्। इस श्रुति के आधार पर यदि भोक्ता जीव और भोग्य प्रपंच, भोक्ता और भोग्य लक्षण ये प्रपंच यदि सिद्ध होता है, ननु अद्वैतवादिनो यदि भोक्तृ भोग्य लक्षण प्रपंच सिद्धि स्यात् तदा सर्वेश परमेश्वरः अनीशो जीवः सर्वज्ञ परमेश्वरः असर्वज्ञो जीवः सर्वकृत परमेश्वरः असर्वकृत जीवः सर्ववृत परमेश्वरः देहादिवृत जीवः। सबका भरण पोषण करने वाला परमेश्वर, एक शरीर को भरण पोषण करने वाला जीव, जीव को अपने पेट नहीं भरता है तो दूसरों को क्या भरेगा, वो ऐसा पेट उसने ले रखा है, महासन जितना डालो खाली, जितना डालो उतना ही खाली। श्रद्धे स्वामी अखंडानंद जी कभी कभी व्याख्या करते हैं तो कभी कभी मजाकिया व्याख्या कर देते हैं, मनोरंजनात्मक व्याख्या। किसी ने कहा महाराज सुबह भी डालो, दोपहर भी डालो, शाम को भी डालो, इस घड़े में डालते जाते हैं, ये कभी नहीं भरता, कारण क्या है? क्योंकि नीचे छेद है ना, इसलिए नहीं भरता। साधारण बात है, अब एक छेद हो जाए तो जितना पानी डालो सब निकल जाता है, घड़ा भरेगा? तो एक ही छेद होने में घड़ा में पानी नहीं भरता है, तो यहां तो नौ नौ छेद है, कहां से घड़ा भरेगा? भरेगा ही घड़ा, आशा कर लो ये घड़ा भर जाएगा, नहीं भरेगा बाबा। तो परमेश्वर सर्ववृत्त,